ओम शांति। आज का हमारा विषय है चले थे वरने श्री लक्ष्मी को और बन गए बंदर स्वरूप। और इसके पहले जो क्लास हुई वो थी अनुभवों की अथॉरिटी, जो आज की मुरली का स्लोगन रहा कि अगर हमारे पास अनुभव की अथॉरिटी होगी तो हम धोखे से बच जाएंगे, और अगर अनुभवों की अथॉरिटी नहीं है तो पूरी पूरी मार्जिन है कि हम धोखे में आ जाएंगे। और ये जो क्लास का टॉपिक है वो इसी पर है कि चले थे वरने श्री लक्ष्मी को और बन गए बंदर स्वरूप। क्यों? धोखा हो गया था। अनुभव की अथॉरिटी का अभाव था, वरना इतना सुंदर लक्ष्य लेके कोई कहीं और पहुंच जाए, चढ़ना है ऊपर हिमालय में और जाके पहुंचे तराई में, तो कितना वास्ट डिफरेंस हो गया ना, कि हिमालय की चोटी पर पहुंचने का लक्ष्य रखा था और तुम तो तराई में जाके पहुंच गए, तो धोखा ही तो हुआ ना, असफलता ही तो हुई ना, हार ही तो हुई ना, डिफीट ही तो हुआ ना। तो बाबा इस बात को मुरली में किसका उदाहरण देते हैं? नारद का देते हैं। और धोखा कहाँ होता है? जैसे आज भी बाबा ने कहा, प्रश्न क्या था आज का मुरली में, कि तुम ब्राह्मण आत्माएं देवताओं से भी ऊंच हो। क्या कारण बताया उसका? कि तुम पब्लिक सेवा करते हो। देवताओं का सेवा का रोल नहीं है, देवताओं का रोल क्या है? जो संगम पर पुरुषार्थ किया है वो सतयुग में प्रालब्ध के रूप में उसको भोगने का, सेवा का पार्ट वहां नहीं है, सेवा का पार्ट यहाँ है। और उसमें भी हम ब्राह्मणों की सेवा भी कई तरह की होती है, लेकिन हमें जो स्पेशल सेवा मिली है रूहानी सेवा की। और जब हम रूहानी सेवा के लिए निमित्त हैं और जब हम पब्लिक में जाएं सेवा करने के लिए, तो हमारी रूहानी स्थिति क्या होनी चाहिए? बहुत ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि हम जिनकी सेवा करने जा रहे हैं वो है बॉडी कॉन्शियस लोग, और बाबा ने हमें जीवन दी है सोल कॉन्शियस वाली। लेकिन अगर मैं सेवा के फील्ड में जाकर उन्हीं जैसी बन जाऊं तो धोखा होना तो निश्चित है। और जब धोखा होगा तो यही होगा कि चले थे वरने श्री लक्ष्मी को और बन गए बंदर स्वरूप। तो कैसा है इसका नारद का उदाहरण जो बाबा देते हैं शास्त्रों में भी? पहले तो हमने कहा ये नारद का उदाहरण बाबा देते हैं, और बाबा कहते हैं शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई है वो संगम का रेफरेंस है। तो वो नारद कौन होगा फिर, अगर संगम का रेफरेंस है तो? संगम का रेफरेंस है ना, तो वो नारद कौन है? हम हैं। वो कहानी एक नारद की नहीं है, हम बच्चों की ही है। क्योंकि नारद को क्या बताते हैं कि पहले वो दासी का पुत्र था, शुद्र पुत्र था, दासी पुत्र था, और फिर वो अगले जन्म में भक्ति की है, मानस पुत्र बना है ब्रह्मा का, यही बताते हैं ना। और हम क्या कहते हैं, हम बाबा के पास आए, हमारा दूसरा जन्म हो गया, हम भी यही कहते हैं ना। तो पहले जन्म में हम कुछ और थे, शूद्र थे ना, थे ना हम भी, और बाबा के पास आए, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाए, नया जीवन मिला, तो वो भी तो ब्रह्मा कुमारी था ना, ब्रह्मा का मानस पुत्र। हम दुनिया वालों को क्या कहते, लोग पूछते ना ब्रह्मा कुमारी क्या होता है, तो हम कहते जैसे राजा का बेटा राजकुमार, राजा की बेटी राजकुमारी, ऐसे ब्रह्मा का बेटा ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा की बेटी ब्रह्मा कुमारी, तो इजीली कन्वे हो जाता है मैसेज, समझ में आ जाती है। ऐसे ही वो भी मानस पुत्र है ब्रह्मा का, माना क्या है, ब्रह्मा कुमारी तो हुआ ना, और क्या हुआ, और हम कौन है, हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो कहानी ये हमारी है, कहानी हमारी है, तो हमें ध्यान से सुनना है इसको, कि इस कहानी में कहां कहां उसके साथ वो भगवान की श्रीमत के विपरीत गया है, और कैसे उसके साथ धोखा हुआ है, और कैसे फिर वो ट्रैक पर आया है। हमने कहा ना भट्टी माना क्या, स्वयं की चेकिंग, पढ़ाने वाले को जो पढ़ाना था उसने पढ़ा के समय से पहले सिलेबस पूरा कर दिया, कि अब बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे दूं कि जो पढ़ाया है उसको घोट ले, उसका जो बाबा ने पढ़ाया है, जो सुना है बाबा से, उसको जीवन में उतारे, उसका स्वरूप बने। क्योंकि जब हमारी एग्जाम होगी, हमारे मार्क्स मिलेंगे, हमको इस आधार पे नहीं मिलेंगे कि हमने कितनों की क्लासेस सुनी, कितनी बार सुनी, नहीं, लेकिन जो सुना भगवान का उसका स्वरूप कितना बने, वो आधार होगा हमारा मार्क्स स्कोर करने का। और इसलिए ये भट्टियों का जो समय चल रहा है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, झांको अपने अंदर, बहुत हो गई कमेंट्रियां सुन के, बहुत हो गए क्लासेस सुन के, अब एकांत में बैठने से पहले थोड़ा सुन के फिर चेक, फिर थोड़ा सुन के फिर चेक। सुनना हमारा लक्ष्य नहीं है, पर सुन क्यों रहे हैं, कि सुनने वो एक जो सुनेंगे वो आधार बनेगा, मैं स्वयं की चेकिंग उस आधार से कर पाऊंगा। तो लक्ष्य है चेकिंग, और लक्ष्य है चेकिंग के आधार से चेंज लाना, क्योंकि हम जिस स्वरूप से नीचे उतरे थे, जब तक उस स्वरूप में नहीं पहुंचेंगे, बाबा अपने घर में एंट्री देने वाला है नहीं। तो या तो भगवान की शिक्षाओं के आधार से मैं अपने आप को उस स्वरूप में ला लूं, या तो फिर 7 डेज कोर्स में हम दूसरों को भी बताते हैं, या तो याद, या तो सभी को पता है क्या बोलते हैं हम लोग। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, तो हमें कैसे बनना होगा, दूसरे तरीके से नहीं, याद के तरीके से, श्रीमद के माध्यम से। तो कहानी क्या आती है नारद की, माना अपनी ही कहानी है, कहानी ऐसे आती है कि नारद को एक जगह रहने का होता नहीं है कभी, कि तुम एक जगह नहीं टिकोगे, और इसीलिए सदा वो क्या करता है, भ्रमण। देखियो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भी सदा भ्रमण करती है, एक जगह नहीं रहती, और जो एक जगह रहते हैं तो बाबा भी कहता है बस उस लिमिट में रह जाना है, क्या एक सेंटर का ही, मतलब जो विश्व के राज्य अधिकारी बनना है ना, कि एक सेंटर का राज्य अधिकारी बनना है, भ्रमण करते रहते हैं ना। और अगर वो भ्रमण भी नहीं है फिजिकली, पूरे विश्व का भ्रमण मेंटली करने के लिए कहते हैं बाबा हमें। हर मास के तीसरे रविवार को हम क्या करते हैं, पूरे विश्व की सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन बैठे तो एक ही जगह पर होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि फिजिकली भ्रमण की बात है, पर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी मतलब जिसका मन बुद्धि भ्रमण करता रहेगा सेवा के अर्थ। तो नारद को दिखाया कि भ्रमण करते रहते हैं, तो ऐसे भ्रमण करते करते एक बार पहुंच के हिमालय के क्षेत्र में। बहुत सुंदर वन है, बहुत सुंदर पर्वत है, नदी है, गुफा है। मन में आया सदा ही भ्रमण करता रहता हूँ, थोड़ा सा कहीं तो एकांत में बैठ जाऊं। और वहां पर एकांत में बैठ गया। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, आए हैं ना मधुबन में, बहुत हो गई सेवा, थोड़ा सा जाके पुरुषार्थ को मधुबन में बढ़ा के आते हैं। नहीं, हिमालय होगा ना, ये हिमालय माना क्या, चोटी, ऊंचाई पर चले जाना, जहां श्रेष्ठता है वहां पहुंच जाना। तो मधुबन क्या है हमारा, हाँ, सबसे श्रेष्ठ स्थान, और उसमें भी पांडव भवन, तो हाँ, इसीलिए जिनको पांडव भवन में भर्ती करने का चांस मिलता है फूले नहीं समाते हैं, अपने भाग्य की मन ही मन सराहना करते हैं। तो हमें इतना अच्छा चांस मिला है, तो उसने भी क्या किया, गुफा में बैठ गया। और लेकिन मधुबन में आने का चांस जो भाग्य ने तो दिया, लेकिन उस भाग्य को साकार रूप देने के लिए कोई निमित्त बनाना, आ जाएगा कोई भी ऐसे ही। अर्थात कहने का तात्पर्य कि मधुबन में भी पधारे उस पिता परमात्मा की ही हमारे ऊपर अनुकंपा है, उसके बिना आके ऐसे बैठ पाओगे, टाइम हो गया तो अब जाना भी पड़ेगा या नहीं, अब चाहो तो भी नहीं रख सकोगे, चाहो तो भी नहीं रुक सकोगे अब, तो ये भी उसकी अनुकंपा है, उसकी ब्लेसिंग से हमारे ऊपर। तो उस नारद की को भी उस शिव परमात्मा की ब्लेसिंग थी कि जो उसको चांस मिला कि बैठे और अपनी ध्यान योग साधना को ऊंचा उठाए। और जैसे हम सभी कहते हैं कि यहां योग लगाना नहीं पड़ता है, योग तो लग ही जाता है, क्या लगा ही रहता है, कहते ना हम सभी अनुभव से। तो नारद जी का भी यही हाल हुआ, बैठा नहीं और जैसे कि समाधि तक की स्टेज में पहुंच गया। अर्थात जो लक्ष्य है हमारा कि दुनियावी ख्यालों से बिल्कुल भी रिक्त और अपने और पिता परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र, जिसको ही बाबा कहते तीन बिंदियां, ड्रामा में जो हुआ उसको स्टॉप माना बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, लगन में मगन ऐसे हो गए कि हम बन गए, तू और मैं भी नहीं रह गए, क्योंकि मेरा भी स्वरूप वैसा जो उसका स्वरूप, तो हम हो गए ना फिर। तो वो समाधिस्थ अवस्था में चले गए। लेकिन कहा कि इंद्र को लगा कि अरे भाई कहीं मेरी पोजीशन न ले ले, और इसलिए उसकी समाधि भंग करने के लिए उसने भेज दिया कामदेव को, अप्सराओं को, सबको। परंतु हुआ क्या कि कामदेव आए, अप्सरा आए, जो भी आए, कोई भी इसकी समाधि भंग नहीं कर पाया। और फिर जब आंख खुली तो उसने पूछा, क्योंकि जैसे ये सब आए, डेफिनेटली समाधि भंग नहीं करने का मतलब कि वो सांसारिक वर्ल्ड में तो आ गए। जैसे देखो हम योग में होते हैं और कुछ लाइट चालू हो गई किसी ने, तो हम नीचे तो आ गए ना, आ गए ना। परंतु अगर अपनी स्थिति मेंटेन करके रखी, तो उसने अपनी स्थिति मेंटेन करके रखी, और मेंटेन करके रखने से क्या हुआ कि कामदेव आदि, जो अप्सराएं आदि डांस आदि कर रहे थे, अप्सराएं माने बहुत सुंदरता, और उनकी अदाएं, जो कोई भी फिदा हो जाए अगर अलर्ट नहीं है तो, ऐसा ही होता है ना दुनिया में। तो लेकिन ये फिर भी फिदा नहीं हुआ, ये अपनी ही स्थिति में एकरस। और तब जाकर कामदेव कहता है नारद जी से, धन्य हो आप, हम सब आपके सामने हार गए और आप विजयी हो गए। तो नारद ने पूछा कि आपको भेजा किसने मेरे पास? कहता है इंद्रदेव ने। तो कहा ठीक है, समाचार दे देना उसको कि उसने जो लक्ष्य ठाना था कि उस लक्ष्य में वो सफल नहीं हुआ, उसकी अपेक्षा के विपरीत हो गया। अब यहां पे इंद्र कौन है जिसने कामदेव और अप्सराओं को भेजा? बोलो कौन है इंद्र? हाँ, कौन है? देखो हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाँ, नाक से सूंघ रहे हैं, जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, ये क्या करती हैं? अपना विषय कलेक्ट करके किसको पहुंचाती है? मन को। और इंद्रियां क्या कर रही है? देने का काम कर रही है, इस संसार के दृश्य लेके आंख मन तक पहुंचा रही है, इस संसार की ध्वनियां शब्द जो भी है वो मन को पहुंचा है। तो देने वाले को भी देवता बोलते हैं। एक देवता का अर्थ होता है दिव्यता और एक देवता का अर्थ होता है जो देता है। तो इंद्रियां क्या हो गई? देवता। और ये सभी की सभी किसको पहुंचा रही है? मन को। तो मन हो गया देवराज, इन देवताओं का राजा नहीं हो गया? इन इंद्रियों का राजा बना या नहीं बना? और किसका राजा? इंद्रियों का। इसलिए नाम क्या पड़ा उसका? इंद्र। समझ में आ रही बात? तो देवराज इंद्र ने समाधि में खलबली मचाने की सोची। इसका मतलब क्या? कि जब हम एक सुंदर लक्ष्य के साथ योग में बैठते हैं कि बाबा जो कहते हैं कि एक रस मुझ में मन टिका लो, लेकिन होता क्या है हमारा? इंद्र ने भेजा, कामदेव को भेजा, अप्सराओं को भेजा का मतलब क्या? इस इंद्र के पास इसके पहले भी जो इन इंद्रियों रूपी देवताओं ने पहुंचाया हुआ है, वो इतना उसने उसको प्रैक्टिकल में जिया भी है कि वो संस्कार के रूप में अंदर पड़ा है, अभी आत्मा में है। वो संस्कार पॉपअप होते हैं, नहीं जैसे कंप्यूटर में या मोबाइल में एक मेनू को हम क्लिक क्या करते हैं, फटाफट बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बस क्लिक करो और पॉपअप हो जाता है, होता है नहीं? तो हमारे अंदर के संस्कार उभर उभर के आते हैं, लेकिन हम दृढ़ता लेकर बैठते हैं तो हमें सफलता मिलती है कि जो संस्कार इस ध्यान साधना के बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन मैंने उसको साक्षी होकर देखा, उसके प्रवाह में नहीं बही तो वो वापस नीचे भी बैठ गए। जो उभर कर आए थे वो वापस जाके बैठ गए, और तब फिर मैं अपनी ध्यान साधना में सफल हो गई। और अगर सचमुच मैंने अच्छा योग अनुभूति किया है तो जब मैं ध्यान से नीचे उतरूंगी कर्म क्षेत्र में तो आना है ना, वो मेरी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अगर सच्ची स्थिति नहीं बनी है, सिर्फ वो आधे घंटे का एक घंटे का प्रोग्राम मिला था, रेड लाइट थी तो हम बैठे थे कैसे भी करके चुपचाप, लेकिन अंदर में तो स्थिति बनी नहीं थी। भले कमेंट्री भी क्यों नहीं चल रही थी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, स्वरूप तो बने नहीं थे, सिर्फ विचार दे रहे थे अभी, नहीं जैसे ज्ञान सुना है पर अभी स्वरूप थोड़ी बने हैं ना। तो ऐसे ही कॉमेंट्री के द्वारा ज्ञान सुन रहे थे हम कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, पर सचमुच बनी नहीं थी। इसलिए जैसे ही मैं उठी और कुछ ऐसी बात बनी, मैं प्रेम स्वरूप तो नहीं, घृणा का स्वरूप बन जाती हूं। जैसे कुछ बात हुई, शांत स्वरूप नहीं, क्रोध का अशांत का स्वरूप आ जाता है सामने। परंतु नारद के साथ वो नहीं हुआ तब कहे कि सच्ची उसको समाधि लगी थी और सचमुच उसने अपने पुराने संस्कार जो अंदर में उभर उभर के आते हैं उस पे उसने विजय प्राप्त कर ली। अब जब विजय प्राप्त कर ली तो कहा कामदेव ने भी प्रशंसा की, माना हमारे उन संस्कारों ने भी प्रशंसा कर दी, वाह क्या खूब, हाँ हमें अपने सामने विचरने के लिए ज्यादा समय आपने दिया ही नहीं, आप तो विजयी बन गए, हम तो आपकी सेवा में हाजिर हुए लेकिन आपने हमारी सेवा नहीं ली, क्योंकि आप समझदार थे कि ये सेवा नहीं है बल्कि मेरी समाधि अवस्था में दखल है, विघ्न है। अब जब इंसान की प्रशंसा होती है ना, तो कहते प्रशंसा सुरा के बराबर होती है। प्रशंसा अमृत के बराबर भी रूप ले सकती है। कब? अगर जो हमारी प्रशंसा हो रही है उसका क्रेडिट जिसने हमें उस लायक बनाया है उसको देते हैं। आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं, हमारे जिस स्थिति के प्रशंसा हो रही है, ये हम अपने आप तो नहीं बनते हैं ना, इतनों का कंबाइंड सहयोग होता है। एक बच्चे को जन्म मिला, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, कितनों का उसमें सहयोग होता है, सिर्फ माता पिता का ही नहीं, परिवार का ही नहीं, उस समाज का, जहां हमारा घर है वहां पर पास में बगीचा है खेलने के लिए, उस गवर्नमेंट का जिसने बगीचे का प्रबंध किया है जहां बच्चे जा सकते हैं, वहां एक स्कूल है, वहां टीचर है जहां बच्चे को हम एडमिशन दिलाते हैं, वहां टीचर से पढ़ के आते, इन सब का सहयोग से तो हम जो कुछ भी होते हैं बनते हैं। तो अगर आज हम जिस भी स्थिति में हैं और उसकी अगर प्रशंसा हो रही है और उसका क्रेडिट हम स्वयं अकेले न लेकर उन सबको देते हैं जिनके बदौलत हम बने हैं, तो वो प्रशंसा अमृत का रूप धारण करती है। लेकिन हम अगर अकेले ही उसका क्रेडिट लेते हैं तो वो प्रशंसा फिर शराब का रूप ले लेती है, कि एक बार जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसकी मेंटल स्थिति क्या हो जाती है, दावा डोल हो जाती है। कहां वो अमीर घराने का होता है लेकिन शराब क्या पी, मेंटल स्थिति इतनी उसकी बिगड़ी कि उसको अंदर में ऐसे लग रहा है मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं, और पिया है तो सब लड़खड़ा रहा है, वहीं गली में वहीं नाली में गिरा पड़ा है लेकिन अनुभव कर रहा है मैं तो एक बहुत बड़ा राजा हूं, महल में हूं। वो तो जब उसका नशा उतरता है ना तब उसका भ्रम टूटता है कि मैं बड़ा राजा हूं या कहां पड़ा हूं, लेकिन जब तक भ्रम वो नशे का असर होता है तब तक तो वो अपने जैसा किसी को समझता नहीं है और ये हालत होती है उसकी। अब नारद के साथ भी ऐसा ही हो गया, प्रशंसा कर दी ना कामदेव ने भी कि तुम तो विजयी बन गए। तो इस प्रशंसा को सुनकर उसको क्या लगता है कि शिवजी ने भी काम, लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ काम को नहीं जीता, क्योंकि उसको पूछा ना कि तुमको किसने भेजा है, तो बोला इंद्र ने, तो क्रोध भी नहीं किया, और जो अप्सराएं आके इतना अट्रैक्ट कर रही थी कि चलो फिर हम तुम्हारे को स्वर्ग लेके चलेंगे वहां खूब एंजॉय करेंगे, उससे भी वो किनारा रहा, न्यारे रहा, तो लोभ से भी परे रहा। तो उसके मन में अभिमान आ जाता है कि शिवजी ने तो, मतलब कहानियों में आता है कि शिवजी ने तो सिर्फ काम को जीता जो कामदेव को ही भस्म कर दिया था, पर क्रोध को नहीं जीता था। इसको अभिमान आता है, मैंने तो काम को भी जीता, मैंने तो क्रोध को भी जीता और मैंने तो लोभ को भी जीता। तो जनरली क्या होता है, जैसे विश्व में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं ना कि भाई फलाना माउंट एवरेस्ट गया, इतनी दूरी इतने कम समय में पूरी की। अगर एक दूसरे व्यक्ति ने भी प्रयास किया और वो कम समय में ज्यादा दूरी पार करके आए, तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है अब फर्स्ट पे वो आ जाएगा। वो पहले फर्स्ट पे था, अभी दूसरा आ जाएगा फर्स्ट पे। तो इसको भी क्या लगा, अब मैं फर्स्ट पे आ गया। और जब मैं फर्स्ट पे आया जिसकी भेंट में, तो थोड़ा उससे मुलाकात तो कर लेनी चाहिए ना, उसके साथ जाके कि मैं भी तेरे बराबरी का हूं। तो जाते हैं भोलेनाथ के पास और जाके अपना बखान करते हैं। और भोलेनाथ जी बड़े ही आश्चर्य के साथ, बड़े ही विस्मय के साथ उसको सुनते हैं, जो समाचार देने आया कि मैं समाधिस्थ हुआ और मुझे कामदेव समाधि भंग करने आया, परंतु मैं उसमें सफल रहा, समाधि को भंग नहीं होने दिया। मैंने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, लोभ को भी जीता। लेकिन शिवजी बड़े ही न्यारे और विस्मय होकर सुन रहे हैं और फिर कह रहे, ठीक है, ये खबर जो आप मुझे सुनाने आए हो ना, वो तो ठीक है कि मुझे सुना दी, पर भगवान नारायण के पास जाके नहीं सुनाना। उसने कहा, अगर प्रसंग, वैसे तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अगर प्रसंग निकल आए तो। बोले, प्रसंग हम कई बार बोलते हैं ना, मेरा कुछ इरादा नहीं था, पर कुछ बात ऐसी खड़ी हो गई, मेरे मुख से निकल पड़ा, हम बोलते हैं ऐसे। तो शिवजी ने वहां पर भी डायरेक्शन दे दिया, अगर प्रसंग खड़ा भी हो जाए तो भी आप अपनी इस न्यूज को अपने तक छिपाए रखना, बाहर नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने मेरे को कोई बात कही या कोई मेरे साथ व्यवहार किया, अगर मैं आपको कहूं, बहन जी आपने जो मेरे को बोला ना, जो व्यवहार मेरे साथ किया ना, वो तो ठीक है, पर किसी अन्य के साथ नहीं करना। मतलब क्या सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपने जो किया वो ठीक नहीं है। क्लियर इंडिकेशन है ना, अगर वो ठीक होता तो सबके साथ करो, पर एक क्लियर इंडिकेशन है कि आप जो कर रहे हो वो उचित नहीं है। इसलिए भोलेनाथ जी ने कह दिया, मुझे तो आपने बता दिया ठीक है, पर भगवान नारायण के पास बिल्कुल भी जाके नहीं बताना। अब नारद जी को क्या लगता है, मैं इनकी बराबरी पे आ गया हूं ना, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये है इंसान की हालत, जब सोल कॉन्शियस से हम बॉडी कॉन्शियस पे शिफ्ट होते हैं ना। सारा ब्राह्मण जीवन क्या है हमारा, ब्राह्मण बनने से पहले अज्ञान काल में थे, पूरा ही लाइफ बॉडी कॉन्शियस। ब्राह्मण बन के, ब्राह्मण के बाद फरिश्ता सो देवता बनेंगे फ्यूचर में, पूरा ही लाइफ सोल कॉन्शियस। लेकिन ब्राह्मण जीवन में क्या चल रहा है, कभी सोल कॉन्शियस, कभी बॉडी कॉन्शियस, कभी सोल कॉन्शियस, कभी बॉडी कॉन्शियस, झूला झूल रहे हैं मस्त से। और उस झूले में कई बार पता ही नहीं चलता है कि हमारे से कुछ गलत हो रहा है। हम सोचते नहीं, हम तो मुरली सुनते हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हमसे थोड़ी कुछ गलत होता है। यही तो चेकिंग करनी है बैठ के, और क्या करना है। सिर्फ नियम प्रमाण मुरली सुन ली, अमृत वेला उठ गए, नुमाश्याम का योग कर लिया, सफेद वस्त्र पहन ले, ब्रह्मा भोजन कर लिया, इतना ही काफी नहीं है। 63 जन्मों का रावण हमारा दुश्मन है, बाबा ने कहा है, उस बीज अंदर में पड़े हैं, वो उभर उभर के आते हैं, जैसे ही अनुकूल उनको वातावरण मिलता है। नहीं, गर्मी में बीज बोया, पानी मिला नहीं तो पड़ा है, बारिश आई अपने आप निकल आया। हम कई बार कहते हैं कि यहाँ मीठा, चींटी को पता कैसे चलता है यहाँ मीठा है, यहाँ आ जाती है। अरे वो सूक्ष्म सूक्ष्म जंतुओं के भी अंडे पड़े होते हैं ना, सिर्फ पेड़ों के ही थोड़ी ना पड़े होते हैं, और वो भी उनको वातावरण मिला और पैदा हो गए वहां पे। तो हमारे अंदर भी 63 जन्मों का तो है ना, वहां थोड़ी हमने 63 जन्म में ब्रह्मचर्य पालन किया है, क्योंकि सतयुग से ही तो हमारा गृहस्थ जीवन है ना। लेकिन त्रेता के एंड में फिर द्वापर में तो हमने पवित्र गृहस्थ आश्रम को गृहस्थ अलग कर दिया, आश्रम अलग कर दिया, तो वो पवित्रता तो नहीं रही, तो विकार आ गए हमारे जीवन में, तो वो है। तो इसको सावधान कर दिया, परंतु इसको क्या लग रहा है कि मैं उनके बराबरी पे आ गया ना, इनको सहन नहीं हो रहा है। तो अनमने मन से जब कोई हमारी तारीफ नहीं करे, खुश नहीं हो, तो क्या होता है, अनमना होके चल पड़ा। थोड़ी सी कदर की शिव भोलेनाथ के डायरेक्शन की, कि तुरंत नहीं गया भगवान विष्णु के पास, नारायण के पास, कुछ दिन रख के जानबूझकर, की मना तो किया है ना, कुछ दिन रखने के बाद वो गया। तो विष्णु भी, क्योंकि बहुत दिन के बाद आया ना कुछ दिन रख के, तो विष्णु भी बड़े खुश हुए और बड़े आवभगत की वार्म वेलकम किया। नहीं जैसे कोई बहुत दिनों के बाद आए तो हम अपनी जगह सीट पे अगर बैठे तो उठ जाते हैं, हाय हेलो करते हैं, तो सामने वाले को भी लगता है कि देखो मेरा अच्छी से वेलकम किया जा रहा है। तो विष्णु जी भी बैठे थे तो उठ गए और उसका वेलकम किया, और कहो क्या बात है, बहुत दिनों के बाद है, कोई समाचार? हाँ हाँ, एक बहुत अच्छा खुशी का समाचार लाया हूँ। एक तो आया उसकी खुशी हुई, और फिर दूसरा खुशी का समाचार सुनने जा रहा है। क्या है भाई तुम्हारे पास खुशी का समाचार? तो सारा वृतांत सुना दिया। अब अंतर देखो, भोलेनाथ जी ने तो विस्मय पूर्वक होकर सुना, भोलेनाथ जी ने तो डायरेक्शन दे दिया कि मुझे सुनाया, दूसरे को नहीं सुनाना। अब इसने क्या किया, भगवान नारायण ने विष्णु ने प्रशंसा पे प्रशंसा कर दिया, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विजयी बन गए, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। लेकिन उसने भी यही कह दिया कि आगे नहीं बढ़ाना इस बात को। बाद में पहले प्रशंसा कर दी, इसको फिर से वही लगता है, क्योंकि उसने आवभगत भी की, अपने बगल में भी बिठाया, तो उसको लगा मैं भी तो इनके बराबरी का हूं। तो चलो थोड़ी खुशी तो हुई, परंतु फिर से इसको भी मेरे से ईर्ष्या हो रही है, मेरे बराबरी पे आ गया। तो भगवान विष्णु इसकी हरकतों से समझ गए कि इसके अंदर अभिमान का बीज अच्छा खासा अंकुरित हो उठा है। लेकिन भगवान विष्णु ने यह भी ख्याल किया कि देखो, जब हमारे जीवन में जब कोई सफलता आए या असफलता आए, जो भी हमारे जीवन में घटना घटित हो, हम शेयर जरूर करेंगे, और सबसे पहले किसको शेयर करेंगे, जो हमारे क्लोज होगा, ऐसे ही करेंगे ना। तो भगवान विष्णु कहते हैं चलो भले अभिमान का अंकुर फूटा है, परंतु फिर भी ये खुशखबरी सुनाने तो मेरे ही पास आया, दुनिया के पास तो अभी गया नहीं है, पहले तो मेरे पास ही आया, मतलब अभी भी मेरा भक्त तो जरूर है, वो अभी भी मेरा भक्त तो जरूर है, और चूंकि अभी भी मेरा भक्त है तो मेरा फर्ज बनता है, ये जो धोखे में आ गया है, इस धोखे से मैं इसको बचाऊं। यही कहते कि हम अगर थोड़ा बहुत भी लाइन से निकल गए, लेकिन फिर भी अगर दरवाजे पर भगवान के दरवाजे को पकड़ के रखा है, तो बाबा मदद करते रहेगा। लेकिन अगर एकदम से छोड़ दिया है, तो फिर बाबा भी मदद नहीं करेगा। तो विष्णु भगवान को भी ख्याल आया है, तो अभी भी भक्त मेरा ही गया, तो पहले उसने बताया शिव जी के पास, तो बोले अभी और कहीं तो गया नहीं है ना, जो आराध्य हमारा वही है ना, शिव बाबा, और बनाएगा क्या हमको विष्णु, तो हमारा वही है ना, ब्रह्मा जी भी तो हमारे लिए क्या है, फॉलो फादर कह रहे हैं ना, हम दोनों फादर को फॉलो करना है, तो ये भी कहीं और थोड़ी गया है बताने अपनी सफलता, अभी यहीं तक सीमित है। तो क्या इसका जिसके अंदर अहम आ गया है, अभिमान आ गया, इसका इलाज तो करना पड़ेगा। तो इलाज से पहले उसको क्या किया, उसने प्रशंसा कर डाली। तो ये कैसा इलाज हुआ? तो कई बार कहते हैं ना, जब कोई फोड़ा हो जाता है और समय पर उसको हमने ध्यान नहीं किया, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो कहते हैं अब ये गोली से तो ठीक नहीं होगा, इसकी तो सर्जरी होगी, लेकिन अभी सर्जरी लायक थोड़ा और बड़ा होने दो। होता है नहीं होता है? कई बार स्टोन आ जाता है बताते हैं, पर डॉक्टर कहता नहीं अभी नहीं कर सकते स्टोन का सर्जरी, थोड़ा और देखते हैं। हालांकि पता है बीमारी है, गोलियों से चलाओ, सर्जरी तो एक्सट्रीम पे पहुंचने पे होता है। तो इसलिए पहले तो उसकी प्रशंसा कर दी और कहा अभी इसकी सर्जरी तो करनी पड़ेगी, और इस सर्जरी के लिए चलो यहां पे थोड़ी प्रशंसा भी कर दी और बोला भी। और फिर उसने क्या किया, ये तो विदा लेके चल पड़ा, मन में यही सोचते सोचते कि दोनों को भी ना मेरे से ईर्ष्या हो रही, मैं उनके बराबरी पे आ गया हूं ना अभी, तो इनसे देखा नहीं जा रहा है। चलो इन ख्यालों में डूबते डूबते आगे बढ़ रहा है, तो देखता है बहुत सुंदर नगर है, बहुत सुंदर, और पूरी प्रजा कहीं ना कहीं बिजी है। तो वो देखता है और चलने वाले राहगीर से पूछता है कि ये कैसा नगर है और ये यहाँ पे क्या सब हो रहा है, आप सब लोग किस बात में बिजी हैं? कहता है ये शील निधि राजा का नगर है और उनकी बेटी है विश्व मोहिनी, उनके स्वयंवर रचने का प्रोग्राम होने वाला है, सब उसकी तैयारियों में हम सब लगे हुए, क्योंकि बंधनवार तोरण आदि जो भी तैयारियां होती है। तो वो सब जब उसने सुना तो सोचता है कि थोड़ा मैं भी झांक के देख लेता हूँ, थोड़ा मैं भी झांक के देख लेता हूँ। है कौन वो नारद? माना क्या तपस्वी, नारद माना क्या योगी, नारद माना क्या वैरागी। लेकिन एक बार पटरी से नीचे उतरते हैं तो कैसे नीचे उतरते हैं वो दिखाई दे रहा है। सोचता थोड़ा सा झांक के देख लेता हूं ना मैं, अब झांकने के क्या, थोड़ा में ही तो फंसता है इंसान, फंसते तो थोड़े में ही है ना हम सब। अरे मैंने तो सोचा था बस थोड़ा 5 मिनट जाके देखूंगी, लेकिन गई तो वही की हो गई। होता है नहीं कई बार? अब ये भी गया तो सही अंदर, और चूंकि नारद है वैरागी है तपस्वी है, तो सभी तो तपस्वियों का तो क्या करते हैं, हार्टी वेलकम करते हैं। राजा ने उसका खूब हार्टी वेलकम किया, दिल से स्वागत किया, और चूंकि तपस्वी है तो सिर्फ स्वागत नहीं किया, स्वयंवर होने जाना है ना, तो बेटी को भी बुला लिया विश्व मोहिनी को कि हे नारद जी जरा इनकी हस्तरेखा तो पढ़ के बता दो। अब ये हस्तरेखा, पहले तो जैसे ही वो सामने आई उसके रूप पे फिदा हो गया, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। वो जो अप्सराएं आई थी ना उसकी समाधि भंग करने, उससे भी बहुत खूबसूरत थी। तो रूप देखकर ही वहां पर फिदा हो गया, ऊपर से कहा गया हस्तरेखा। तो जो रूप सुंदरी थी तो उसका पूरा ही शरीर सुंदर था, तो हाथ भी बड़े बड़े कोमल कोमल सुंदर था, वहां पर भी प्रभावित, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस समझ में आ रहा है, सोल कॉन्शियस कंप्लीटली उस ट्रैक से उतर गया है, कंप्लीट बॉडी कॉन्शियसनेस के ट्रैक पर नीचे नीचे उतर रहा है। और जैसे कहा शराब पीने होती है तो होता कुछ है दिखता कुछ है, इसको भी हस्तरेखा में लिखा कुछ और है और ये पढ़ता कुछ और है। हस्तरेखा में लिखा है इसका होने वाला जो वर होगा वो अमर होगा, इसका होने वाला जो वर होगा वो अजेय होगा, अजिंक्य, कोई उसको जीत नहीं सकेगा। इसका होने वाला जो वर होगा, संसार उसकी सेवा करेगा, मतलब करता है, अजिंक्य है, अमर है। गा माना फ्यूचर वाला नहीं है, वो ऐसा वर है इसका। और ये क्या सोचता है, नहीं, जो इससे शादी होगी, मतलब जिसको ये वरमाला पहनाएगी उसमें ये गुण आ जाएगी। समझ में आ रहा है, लिखा कुछ और है। एक्चुअली उसने पढ़ा तो ठीक था, पर बॉडी कॉन्शियसनेस का नशा था ना, और बनना चाहता है कि मैं बन जाऊं, क्योंकि जैसा ही उसने देखा ना, उसको विवाह का भी ख्याल आ गया कि मैं इससे विवाह करा लूं, क्योंकि सुंदर तो वो इतनी थी, श्री लक्ष्मी जैसी ही समझो। और पहले ही उसने मन में ठान लिया था कि मैं तो नारायण के बराबरी में आ ही चुका हूं, और श्री लक्ष्मी जैसी पत्नी मेरी भी हो जाएंगी तो हम तो बराबरी वाले हो जाएंगे। फिर जैसे वो श्री क्षीर सागर में रहते हैं अपने श्री लक्ष्मी के साथ, मैं भी रहूंगा एक कदम और बराबरी का। और ऐसा कहकर वो बताकर चला तो गया, लेकिन चला जाने के बाद अब वही ख्याल चल रहे हैं, वही ख्याल चल रहे हैं। तभी कहते हैं, देखो भले पर तको नहीं। चलो थोड़ी गलती हुई है, पर अभी इसको ताकते मत रहो। पर उसने गलती की ताकने की भी, अब वही थॉट चल रहे, अब तो जप तप करना सब भूल गया, बस किसी तरह से ये मेरी भारिया बन जाए। अब कैसे बने, तो कहा अगर इसका स्वरूप श्री लक्ष्मी जैसा है, तो मेरा भी स्वरूप अगर नारायण जैसा होगा तभी तो जयमाल डालेगी ना मुझे, तो अपने स्वरूप को बनवा लेता हूं मैं नारायण जैसा। तो किससे बनवाऊं, तो आखिर फिर भी आश्रय कौन है उसका, विष्णु ही है। बॉडी कॉन्शियस में भल आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं किसके बल पे आगे बढ़ाऊं, वो उसको भूला नहीं है अभी भी। तो फिर भी उसको वही याद आता है कि अगर मदद मिलेगी तो भगवान विष्णु जी से ही मिलेगी। और कहता है अगर मैं जाऊं तब तक तो स्वयंवर भी हो जाएगा, जाऊं और जाके रिक्वेस्ट करूं, इसलिए वहीं पे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज प्लीज, खूब उनको मनाता है, रिक्वेस्ट करता है। और जैसे कहा कि भगवान की भी तो अपने तरीके होते हैं ना, उसको रियलाइज कराना था ना, तो वो भी प्रकट हो गए। बोलो कैसे याद किया, क्या जरूरत पड़ गई। हाँ, एक जरूरत पड़ी है। कौन सी जरूरत पड़ी है, कहते प्रभु जी मेरी ना इच्छा करने, विवाह की इच्छा हो रही है। बहुत बड़ा अच्छा ख्याल है, कर लो। बोलो मेरे लायक क्या सेवा है। जिससे विवाह करना है ना प्रभु जी, उसका स्वरूप है ना बिल्कुल श्री लक्ष्मी जैसा है, तो प्लीज आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए ना। तो विष्णु जी कहते हैं कि भगत अगर भगवान को रिक्वेस्ट करे तो उसको पूरा तो करना ही पड़ता है, पर मन में सोच रहे हैं, उनको कहते ये कैसी बात, रूप हमारा और विवाह तुम्हारा। तो इतने में नारद जी और एक रिक्वेस्ट कर देते हैं। पहले तो रूप की रिक्वेस्ट मांगी है कि आपका रूप मुझे दे दो। दूसरी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु जी जिसमें मेरा हित हो आप वैसा कर दो। तो पहली रिक्वेस्ट अपना इंटरेस्ट कि मुझे शादी करनी है और शादी के लिए मुझे आपका रूप चाहिए। दूसरी रिक्वेस्ट मेरा जिसमें हित हो। तो दूसरी रिक्वेस्ट सुन के नारद जी को फिर प्रभु भी कहते ठीक है, आपने हित की बात कही है ना, तो आप में जिस बात में आपका परम हित है हम आपके लिए वही करेंगे। और फिर वो तो चले गए, अंतर्धान हो गए। और फिर 10 स्वयंवर का समय तिथि सब डिक्लेयर हो गया और ये भी पहुंच गया। अब शंक भोलेनाथ जी जहाँ से पहले होके आया था, जिसने उसको कहा था कि मेरे से तो बात कही है पर किसी और से और विष्णु से नहीं कहना, परंतु भोलेनाथ को पता था ये एक बार ट्रैक से उतरा है, ये मेरे सुनने वाला है नहीं, और इसलिए उसने दो गणों को पीछे लगा दिया था उसके कि ये जहाँ जहाँ जाए तुम सीआईडी बनकर उसके पीछे पीछे लगे रहना। तो जब ये स्वयंवर में जा रहा था, ये सीआईडी भी उसके पीछे पीछे और खूब प्रशंसा कर रहे दो, क्योंकि बंदर का स्वरूप विष्णु ने उसने कहा ना कि जिसमें हित हो मेरा, और स्वयंवर के समय की मांग थी, और विष्णु ने उसको कहते हैं बंदर का स्वरूप दिया, और ये जो दो गण उसके पीछे पीछे भोलेनाथ के लगे हुए सीआईडी करने के लिए, वो दोनों आपस में बोल रहे हैं उनको देख के, एक कहता है वाह क्या सुंदरता है, और दूसरा कहता है ऐसी सुंदरता तो मैंने इसके पहले कभी देखी ही नहीं है। फिर क्या हुई है, उसकी प्रशंसा हुई है। फिर कहा प्रशंसा में क्या होता है, तो फिर और जो प्रशंसा करे हम उनकी भी वैल्यू करना शुरू करते हैं, तो कहते आओ आओ मेरे साथ आओ बैठो बैठो। तो इनको तो बहुत अच्छा चांस मिल गया पूरा सही सही देखने के लिए, और उधर भोलेनाथ ने सीआईडी से पूछा क्या चल रहा है बताओ, तो कहा कि वो नारद जी तो विवाह की इच्छा तक पहुंच गया और स्वयंवर में भी अभी बैठा हुआ है, और तो फिर बोले लेकिन स्वयंवर में उसकी इतनी अच्छी सुंदरता है कि उसका रूप बंदर जैसा हो गया है, और ये बात किसी और को नहीं पता है, किसी और को नहीं पता है, सिर्फ रिक्वेस्ट किसने की है, नारद ने, कि प्रभु मुझे अपना स्वरूप प्रदान करो, और फिर दूसरी रिक्वेस्ट थी जिसमें मेरा हित हो, तो बस इसको सिर्फ पता है कि मेरा रूप भगवान ने सुंदर बनाया है, और प्रभु को जिसने दिया है, और इन दो गणों को, क्योंकि ये साथ साथ है, क्योंकि पहले तो प्रभु जी ने इनसे रिक्वेस्ट की इन दोनों गणों ने कि हमको तो आपको बताना ही होगा कि आप इनको कौन सा स्वरूप दे रहे हैं, बोला नहीं हम नहीं बताएंगे हमारे बीच की बात है, कहा मैं भोलेनाथ जी का सीआईडी हूं संवाददाता हूं, मुझे तो सच खबर देना है ना, झूठी खबर थोड़ी देना है, तो हमारा तो अधिकार बनता है कि आप हमारे सामने सच बताओ, तो सच बता दिया भाई बंदर का स्वरूप है, और सीआईडी ने वहां तक पहुंचा दी बात। तो भोलेनाथ बोले अच्छा भगवान जिसको अपना बनाता है उसको बंदर बना देता है, अब हुआ क्या, तो ये बंदर तो बन और विश्व मोहिनी जयमाला लेके आ रही है, और देखा कि ये भी पंक्तियों में बैठा हुआ है, दूसरे राजा भी है, सबको देखते देखते किसी को पास नहीं किया, और इसके पास भी आई तो इससे भी आगे निकल गई, तो जब वो एक बार ही देखा ना पंक्ति में, उसके बाद पलट के भी नहीं देखा उसको, रिपोर्टिंग कर दी सीआईडी ने कि उसके गले में माला नहीं पड़ी है, विश्व मोहिनी आई है पर उसके गले में माला नहीं पड़ी है, और सिर्फ माला नहीं पड़ी है बात वहां तक नहीं है, दोबारा भी झांक के नहीं देखा है उसको, और यहां तक ये ही नहीं कि उसको दोबारा नहीं झांका है विश्व मोहिनी ने, बल्कि जो उस पंक्ति में दूसरे बैठे हैं ना उनकी तरफ भी नहीं झांक रही अभी, वो तो दूसरे भी घाटे में रह गए हैं, और इतने में वहां पे भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। श्री लक्ष्मी जैसी सुंदरता है किसको भरेगी, विष्णु को, उसको वरा और वो उसको लेके चला, इसको आई गुस्सा, इसने पहले तो जब गुस्सा हुए ना तो ये सीआईडी कहते आप क्यों है गुस्सा हो रहे हो, बोले मैंने भगवान से ये कहा था और भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया कि उसने मेरे रूप की ओर देखा भी नहीं, ये तो मेरी बहुत बड़ा अपमान हुआ है, तो उसने कहा दो गणों ने आप जरा अपना रूप तो देख लीजिए पहले, कि आपके गले में वो जयमाला डाले तो आपका उस जैसा स्वरूप है भी या नहीं, आप पहले देख तो लो, अपना पानी में देख लो, पानी में देखा तो बंदर जैसा रूप दिखाई दिया, पहले उसको थोड़ी पता था कि मैं बंदर हूं, मैंने कौन सा स्वरूप मांगा है, विष्णु का नारायण का स्वरूप मांगा, वो तो उस नशे में है कि मेरा स्वरूप क्या है, नारायण जैसा है, और वो लक्ष्मी क्या करेगी, जिसका स्वरूप माना विश्व मोहिनी लक्ष्मी स्वरूप है, जो मेरे कोई इसको गुस्सा आई तो ये उस पे उन पे भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं बंदर जैसा तो रूप है तुम्हारा, तो उसको गुस्सा आती है, उनको श्राप देता है, जाओ तुम राक्षस बन जाओ, निशाचर बन जाओ। कहते ठीक है नारद जी, आपने हमें श्राप दे दिया, कोई बात नहीं, पर ये सुंदरता हमने नहीं दी है तुमको, हमने तो सिर्फ आपको कहा है कि देखो झांको और आपको दिखाए, देने वाला कौन है, उसके पास तो जाओ पहले, अब भी जाता हूं मैं उसके पास, और गुस्से में चल दिया हाँ? कि भगवान से मेरी सही नहीं कि मैं विवाह करूं, खुद तो विवाह करके बैठा है, और जब चाहता है ना तो आया तो नारायण स्वरूप में, तो लक्ष्मी तो पहले ही है, फिर ये विश्व मोहिनी भी, दो दो, मेरी एक भी नहीं सहता और खुद दो दो करके बैठा है। गया, और भगवान की भी तो माया है ना, मतलब लीला थी ना, रास्ते में ही जैसे हनीमून मनाते हैं वैसे मना रहे थे वो बैठ के, इसको तो जाते जाते रास्ते में ही मिल गए, और वो उस रूप में देखा तो उसको और गुस्सा, जो मेरे बगल में बैठने वाली थी उसके बगल में बैठ के वो ऐसे कर रहा है, और बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में। लेकिन नारायण जैसे कहा पहली भी बार उनकी प्रशंसा ही की, अभी भी कहते नारायण क्या बात, नारद क्या बात है, ऐसे गुस्से में कहां चल दिए जा रहे हो। कहते स्वर्ग की ओर जा रहा हूं। क्यों? जाके नारायण से सारी बात करने वाला हूं। अरे अरे तुम तो स्वर्ग का रास्ता पीछे छोड़ के आए हो, तुम तो नरक की तरफ जा रहे हो। अच्छा कैसे? गुस्से में श्राप दे दिया, पहले तो तुमने मेरा बंदर जैसा स्वरूप बनाया ना, तुम्हें भी अगले जन्म में बंदर की सहायता लेनी पड़ेगी, जो शास्त्रों में से बताते कि इसीलिए राम को फिर वानर, हमको उसमें नहीं जाना है, हमको अपने, हम कैसे सोल कॉन्शियस ट्रैक से नीचे गिरते हैं, हमारी क्या हाल होती है और कैसे हमें अपने आप की चेकिंग करना है, उस पर हैं हम। नारद का गुस्सा गुस्सा गुस्सा, श्राप भी दे दिया, और वो बड़े शांत स्वभाव से कहते नारद थोड़ा चारों तरफ नजरे तो घुमाओ। चारों तरफ नजरे घुमाते हैं, न नगर है, न शील निधि है, न विश्व मोहिनी है, कुछ भी नहीं है। खुलते प्रभु ये सब क्या था? तो बोले ये तुम्हारे को पाठ पढ़ाने के लिए सब किया गया था, तुम्हें अभिमान हो गया था ना बहुत कि मैंने काम को जीता है। आया तुम्हारे पास काम, तुमने कहा मैंने क्रोध को जीता है, आया तुम्हारे पास क्रोध, श्राप देना माना क्या? तुमने लोभ को जीता है, आया तुम्हारे पास लोभ कि लक्ष्मी को वरूंगा तो सारे स्वर्ग, क्या था लिखा हुआ उसका वर कौन सा होगा जो ऑलरेडी अमर है, पर तुमने क्या हिसाब लगाया कि जो इसका वर बनेगा वो अमर होगा और मैं पूरे विश्व में पूजा जाऊंगा, आया लोभ नहीं आया? तो जीवन में जब परिस्थितियां आती है ना, वहां पता चलता है, सिर्फ योग में बैठ जाना, कमेंट्रियां सुन लेना, और मेरी तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, और वो भी मधुबन में तो डेफिनेटली होगी, अभी फील्ड में लौटना है, और इसीलिए फील्ड में लौटने से पहले यहां पर भले मधुबन में अच्छी स्थिति बनती है, पर फिर भी जो ज्ञान को हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, बैठो एकांत में, चेक करो कहां तक पहुंचा हूं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से बात नहीं बनती है, बहुत गहराई से अपनी चेकिंग करने की आवश्यकता है, और वो तो चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु आपने मुझे पुनः संभाल लिया, आपका बहुत बहुत ऋणी हूं मैं। रो के अपना सब बहा दिया, लेकिन फिर भी श्राप भी दे दिया था, फिर यहां रोया भी, पर फिर भी कहा प्रभु अंदर में वो श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है। कहा नहीं होगा, तुमने सबसे पहली अवज्ञा किसकी की है? शिव भोलेनाथ की। जाओ उनके पास, जहां से अवज्ञा शुरू होती है वहीं से क्षमा प्रार्थना होती है। नहीं, कई बार हम आपस के रिश्तों में गलतियां कर बैठते हैं और उनसे क्षमा मांगने के बदले हे प्रभु मेरे को क्षमा, प्रभु कहता उनसे ही जाके मांगो क्षमा। जिसका दिल दुखाया है, जिसकी अवज्ञा की है, उससे ही क्षमा होगी तो ही मन को राहत मिलेगी, वरना नहीं। तो यहां पर भी ऐसे ही है। तो ये एकांत का समय अच्छा योग लगा सभी का डेफिनेटली, लेकिन जब चेकिंग करने बैठते हैं तो लगता है ना हम अभी दूर हैं। तो वो जब तक रियलाइज नहीं करेंगे यहां पर, वो प्रभु के सामने रो के बहा के नहीं जाएंगे, वो पोटली दे के नहीं जाएंगे, तो साथ साथ चलेगा फिर वो फिर से। और इसलिए सब कुछ दे के जाना, तब जाके। इसीलिए कहा कि नारद में ट्रैक से उतरा जरूर, पर फिर भी आस्था भोलेनाथ पर, आस्था विष्णु पर नहीं छोड़ी। उसको पता था कि परम हितकारी मेरे यही हैं, तो उसके रिजल्ट की भगवान ने भी उसकी रक्षा की। तो हमारे जीवन में चाहे कितनी ही बातें आ जाए, कई बार हम सोचते हम इतना ज्ञान योग करते फिर भी हमारे जीवन में इतने पेपर, वो पेपर ही तो चेकिंग के लिए आए हैं। जितनी बड़ी एग्जाम में बैठेंगे उतना बड़ा पेपर तो आएगा ना। बस साल भर में सिलेबस पढ़ लिया और बिना पेपर दिए बोले नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो पेपर तो आएंगे और वहीं चेकिंग होती है। और इसलिए ये समय आपको मिला था, अवश्य ही आप सभी ने अपने अपने रीति से इसका भरपूर लाभ लिया होगा। अभी भी समय है कल तक, जो कुछ भी अपने आप में महसूस करते हैं कि ये अभी भी हमारे अंदर जो हमारे दैवी संस्कारों से मेल नहीं खाता है, जो हमारे बाप के संस्कारों से मेल नहीं खाता है, ऐसी बातें हैं अभी भी हमारे में, प्रभु के चरणों में अर्थात उसको सौंप के जाए, दिल से रियलाइज करके उसको देकर जाए, तो बाबा की पूरी पूरी मदद मिलेगी और अवश्य ही हम विष्णु रूप अर्थात ही ब्रह्मा बाप समान जो हमारा लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य पर पहुंचेंगे और फिर शिव बाबा हमें अपने साथ घर लेकर जाएंगे और उस घर से वापस हम सच्चे सच्चे स्वर्ग में उतरेंगे। इस धरती के स्वर्ग को हमें ध्यान नहीं देना है। ओम शांति।
तन है भले यहाँ पर, जान तो वतन में रहता
तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल सही ना लगता
तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल सही ना
तू ही तो बसता
तुम बिन